ከይና
ከሁዋ የከና
ወይ ኩሽቱ ከይና ከሆነ ከሆ
ጉጁ ተጫው
ፊት ኩሽና
ኩች ከይና ኩጅት ያኮ
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہماری گلرخ ہیں اور انجینئر ہیں کرٹس بائنم۔ جیسا کہ آج اتفاق یہ ہوا کہ عام طور سے بہجے تعارف کروا دیتی ہیں مہمان کا، لیکن آج نہیں کرایا تو میں بھی اس مسٹری کو تھوڑا قائم رکھوں گی اور ایک جھلک سنتے ہیں ان کی آواز کی نہیں بلکہ ان کی کسی حد تک ان کی شخصیت کی۔
اجی تو تم رو، سر کو پیٹو اپنے، ویسے تو بڑی چھپن چھری بنی رہتی ہے اور موقع آیا تو شکل دیکھو پھٹکار برسنے لگی۔
میں جو ہوں نا، میں کوئی بزدل نہیں ہوں۔
ہاں بزدل نہیں ہے، جبھی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگا ہوں وہاں سے بہادر۔
میں چھوڑ چھاڑ کے نہیں بھاگی ہوں آفاق بھائی، مجھے دھوکہ دینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہاں
مگر میں تو گھر گیا تھا تمہارے وہاں، تو تالا لگا ہوا۔
خیر اب تو وہ زمین میں بھی گھس جائے نا تو
میں گھسے گا، وہ بالکل گھسے گا، وہ ڈر کے مارے بالکل گھسے گا۔
یا تو میں نہیں، یا وہ نہیں، اس دنیا میں یا ادھر یا ادھر۔
تو سامعین، یہ ڈرامہ بہت ساری پوری کئی نسلیں سنتی آ رہی ہیں۔ اب بھی مجھے پتا ہے یوٹیوب پہ جو لوگ بہت چھوٹے ہیں جنہوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور داد دیتے ہیں کہ کیا لکھنے والی ہیں۔ اور لکھنے والی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی حسینہ معین اور ہم سب کی حسینہ آپا۔ جی السلام علیکم حسینہ آپا۔
وعلیکم السلام۔
میں نے کس حد تک یہ صحیح کہا کہ شہزوری کسی حد تک آپ کی شخصیت کا عکس ہے؟
شہزوری، دیکھو رائٹر تو اپنے کو کبھی چھپا نہیں پاتا،
جی
کہیں نہ کہیں سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب جو میری لائف، جو لوگ جانتے ہیں مجھے بچپن سے یا کالج کے زمانے میں یا یونیورسٹی کے زمانے میں، وہ تو خیر بآسانی یہ بات کہہ دیتے ہیں،
جی۔
لیکن آپ لوگ چونکہ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ زندگی کا کچھ حصہ اسی طرح کی شہزوری میں گزر گیا۔
اچھا لگتا ہے،
اب جو ہے وہ زندگی کا وہ مقام آتا ہے جبکہ انسان میچیور ہو جاتا ہے، اسے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔
لیکن
لگے
مجھے یہ شہزوری، مجھے ایک بغاوت کی علامت بھی لگتی ہے نا، ایک شخصیت باغی شخصیت ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے حسینہ آپا میں بغاوت ہے۔ وہ
کہنا یہ وہ بغاوت ہے
جی
جو غریبوں کو کچل کے تاری کی جاتی ہے اور ان کی کو بھارا جاتا ہے اس بغاوت پہ، کیونکہ وہ لڑکی ایک ماما کی لڑکی تھی، نوکرانی کی لڑکی تھی
جی،
اور پلی تھی اچھی طرح، اس کو سمجھ بوجھ سب تھی۔ تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں رہے، تو ظاہر ہے بغاوت تو کرے گی، کچھ تو کہے گی۔
تو
یہ والی بات تھی
حسینہ آبا آپ کے، میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کتنے لکھنے والے آئے، آپ کئی عشرے ہو گئے لکھتے ہوئے، اور کتنے 40 سال، اور چھوٹی آپ خود ینگ تھیں جب سے آپ نے کہانیاں لکھنی شروع کی۔
یونیورسٹی سے نکلی ہوں، بلکہ کالج سے لکھ رہی ہوں میں، جب کالج کے زمانے میں سیکنڈ ایئر سے۔
اور بہت سے لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ آپ بچوں کے رسالوں میں بھی لکھتی تھیں، بھائی جان وغیرہ میں، ہے نا، کہانیاں اپنی۔
اسکول میں پڑھتی تھی تو بچوں کے رسالے میں لکھتی تھی۔
اچھا، تو کہاں سے یہ شوق شروع کہاں سے ہوئے، یعنی گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، کس طرح آپ کی یہ شخصیت جو ہے اس کی تشکیل ہوئی؟
گھر کا ماحول میرا تقریباً ویسے ہی تھا جیسا ماحول میرے ڈراموں میں ہے، زیر زبر پیش میں یا کرن کہانی میں، جس طرح کی ہے کہ تفریح بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق۔ آفاق بھائی جو ہیں وہ ایکچولی میرے ایک کزن ہیں، آفاق جو ہمارے ہی گھر میں رہتے تھے، اور وہ ہم لوگوں کو بہت پٹواتے تھے، خود شرارتیں کرواتے تھے، اور اس کے بعد شکایت ہوتی تھی، اور پھر اما سے ہماری ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کیا کیا۔
اچھا،
تو ان کا رول لے کے ظاہر ہے اسے ذرا موڈیفائی کیا اور اسے ذرا سا بڑھا بھی دیا، ایگزیجریٹڈ فارم میں لے آئے، تو وہ آفاق بھائی بن گئے۔
تو کردار تو آپ نے حسینہ آپا، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اتنا خوش نصیب آپ جیسا ہوگا لکھنے والا کہ اس کے بہت سارے کردار، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو سائڈ کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن آپ کے کہانی میں جو کردار آتے ہیں وہ پھر یاد رہتے ہیں لوگوں کو، جیسے کہ آپ نے آفاق بھائی کی بات کی، اکا بوا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو ये जो बात है और खासतौर पे मुझे जो बात आपकी सचमुच बहुत पसंद है कि जो औरत का किरदार है ना वो बड़ा स्ट्रांग है. मतलब ऐसा नहीं है कोई दबी कुचली. कोई भी कहानी आपकी मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक बहादुर उसके मतलब ज़ाहिर है समाज
दबी
में
दबी औरत तो हो नहीं सकती थी ना. हाँ. क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ दबी हुई. दूसरी बात ये शहनाज, जब से मैंने बहुत छोटी उम्र से लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, मैंने अम्मा की लाइब्रेरी थी मेरी
जी,
और उसमें बच्चों की किताबें हालांकि अलग थी लेकिन मैंने बड़ों की किताबें भी पढ़ डाली.
अच्छा.
और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये क्या बात है कि औरत को मारा भी जा रहा है, उसे बंद भी किया जा रहा है, उसको इसकी इजाजत नहीं उसकी इजाजत नहीं, मतलब बहरहाल कुछ करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि औरत बड़ी अजीम होती है कि सबकी खिदमत करती है. मैंने कहा ये कौन सी अजीम हुई कि वो खिदमत ही करती रहे सारी उम्र. उस वक्त मेरा जज्बा ये था, मतलब सॉर्ट ऑफ रिबेलियन कि वाह भाई ये क्या बात हुई कि खिदमत करते रहो और आप कहें अजीम है और काम भी नहीं करने दो और कुछ भी नहीं करने दो
जी.
तो उस लिहाज से शायद ये मेरे जहन में रह गई ये बात, और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैंने ये लिखना जब शुरू किया तो मुझे ये ख्याल जरूर रहा कि औरत मजबूत होती है, लड़कियां चाहें तो सब कुछ कर सकती है. जैसे मैंने मेरे घर में कोई इससे पहले मेरी कोई सी बहन ने ना टीवी पे गई ना कहीं कुछ इस तरह के काम किए, लेकिन मैंने किए इजाजत से किए, माँ बाप की इजाजत से. असल में तो मेरे वालिद तो बहुत ही स्वीट इंसान थे तो और बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको इजाजत देना इतना मुश्किल भी नहीं था. अम्मा को अक्सर फिक्र रहती थी कि ये शो बिजनेस में जाने से वो बहुत घबरा रही थी कि नहीं वहाँ अच्छा नहीं होता होगा. वो समझ रही थी ये फिल्मी दुनिया है, टीवी का जाहिर है उस वक्त तक इतना लोगों को पता नहीं था
जी.
लेकिन खैर मुझे इजाजत मिल गई और फिर मैंने ये साबित भी किया कि अगर आप चाहें तो हर जगह की हर तरह की दुनिया में अपनी इज्जत बना सकते हैं.
तो हसीना पर मैं आपने बात की, ज़ाहिर 40 साल से आप लिख रही हैं तो उससे पहले आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी उस जमाने में या कॉलेज में जहाँ भी आप
कराची यूनिवर्सिटी जी बीएड किया मैंने जी. फिर उसके बाद बाकायदा टीवी पे उन्होंने बुला लिया और फिर एक सीरियल नहीं एक हैप्पी ईद मुबारक मैंने लिखा ईद का प्ले और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी.
जान
फिर मैं लगातार लिखती रही
और उन्होंने सुनने वालों के साथ बहुत अच्छा किया. आमतौर से हम ये बात कहते नहीं उनके लिए लेकिन ये काम उन्होंने अच्छा किया हुआ कि आपकी जान नहीं छोड़ी.
उस जमाने में बहुत अच्छे लोग थे शहनाज
जी,
बहुत अच्छे लोग थे. वरना कौन एनकरेज करता है एक नई लड़की को जिसको ड्रामा लिखना भी ना आता हो उसको एनकरेज करके लिखवाना और उसको आगे बढ़ाना और बढ़ाते रहना. तो आजकल ऐसा नहीं होता है लेकिन उस जमाने में लोग बहुत अच्छे थे, ट्रेंड लोग थे, ड्रामे के बारे में जानते थे. आज तो किसी को ड्रामे की हिस्ट्री भी नहीं पता, ड्रामे की डेफिनेशन भी नहीं मालूम होगी.
हसीना पर मैं यही बात खास तौर से आपसे पूछना चाहती थी, जैसे फेसबुक पे अक्सर हम तस्वीरें लगाते हैं लोग उस जमाने की यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों की और आज किसी सड़क पे जो लड़कियां जा रही हैं या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही हैं, तो मुझे एक बात पे बड़ी हैरत होती है. ये नहीं कि मुझे किसी चीज से इख्तिलाफ है, बुरका ओढ़ना या हिजाब करना ये सब हमारी सब जाती च्वाइसेस होनी चाहिए और करना चाहिए, लेकिन एक तरह से माहौल का असर भी होता है, एक प्रेशर भी होता है. इसकी क्या वजह है कि जिस जमाने को आप कह रही हैं कि उस जमाने में लड़कियां आती नहीं थी, उस जमाने की अगर आप यूनिवर्सिटी को देखें या उस जमाने की
यूनिवर्सिटी में तो सब लड़कियां आती थी.
यही मैं कह रही हूँ कि उस जमाने और कोई बुरका नहीं ओढ़ती थी, मतलब नजर में आती थी अगर
नहीं ओढ़ती थी और कोई हिजाब नहीं पहन, उस वक्त तो राइज ही नहीं था ये.
जी हाँ, और बड़ा शरीफाना माहौल भी था.
पता है कि लड़के कितने सिक्योरिटी देते थे अपने डिपार्टमेंट की लड़कियों को, मजाल नहीं थी कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लड़के आके बदतमीजी करें या कोई जुमला बोल जाएं, जैसे मजाक में भी कुछ कह जाएं, ऐसा कुछ नहीं था. तो ये एक फजा ही अलग थी, घरेलू फजा थी उस वक्त.
बिल्कुल. तो क्यों हुआ ये, क्या जवाल पूरे मुआशरे में आया कि बेचारी लड़की अब घर से निकलती है? ये सारी चीजें इसीलिए है ना कि वो खुद को महफूज नहीं समझती और हमें ऐसी मिसालें नजर आती हैं बजाय इसके कि जब मुआशरा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तनासुब बढ़ता है तालीम का, मुलाजमतों का, تو ایک تحفظ کا احساس بڑھنا چاہیے, لیکن پاکستان میں عدم تحفظ کا احساس بڑھا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوئی؟
بی بی ہمارے یہاں تو خیر عدم تحفظ کا احساس اس لیے بڑھ رہا ہے کہ I'm sorry to say کہ ہمارے مولوی حضرات بار بار فتوے دیتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, میں تو یہی کہوں گی, کیونکہ برقع پہننے سے آدمی پرہیزگار نہیں ہو جاتا, یا یہ کہ برقع پہن کے محفوظ بھی نہیں ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ برقع پہن لیا تو آپ یہ جنگل کی فضاؤں سے محفوظ ہو گئے, ایسا نہیں ہے. برقع پہننے والی لڑکیوں کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے, اور آپ نے اگر یہاں کی خبریں پڑھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا ہم لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں.
بالکل,
لیکن یہ ہم انسیکیور کسی اور وجہ سے نہیں ہوئے ہیں, ہمارے اپنے ہی لوگوں نے ہمیں انسیکیور کیا ہے. یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر آپ صرف قرآن پڑھیں اور صرف قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں تو آپ کو ان سب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. اس کا نیگیٹو اثر یہ ہوا ہے کہ تیزاب پھینکا جانے لگا ہے, جلایا جانے لگا ہے, مارا جانے لگا ہے. تو یہ جو ہے چیزیں, اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے,
جی دنیا بھر میں.
مطلب اگر سیدھا سادہ اگر ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا, لیکن ہم لوگوں نے اسلام کو اس کی اسپرٹ کو تو چھوڑ دیا اور ادھر ادھر کی چیزوں میں زیادہ لگ گئے. پاجامہ اتنا اونچا ہونا چاہیے, تو ناخن اتنے کم ہونا چاہیے, تو بال یہ ہونا چاہیے, اور برقع اس طرح ہونا چاہیے. ان چیزوں میں پڑ گئے اور یہ بھول گئے کہ اصل اسپرٹ کیا ہے اسلام کی.
اچھا حسینہ ابا, میں نے ویسے تو ظاہر ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا عام طور صاحب کی پلیس کی بات ہوتی ہے تو آپ کا تو یہ مشکل یہ کہنا کہ کون سا مقبول نہیں ہے, لیکن مثلاً کہیں یا جیسے میں نے بھی سنوایا شہزوری, تنہائیاں.
پتی جلدی جلدی کرو, پتی 20 منٹ رہ گئے, جلدی کرو.
کہاں میں بم پھٹنے میں کہاں پھٹ رہا ہے؟ ارے کم از کم باپ کو تو بتا دو.
کیا صبح ہی صبح سورہ اسرافیل پھونکنے لگتی ہو؟ یہ رہا ناشتہ, اور ہم ہاتھ پیروں میں پنکھے باندھ کر ہوائی جہاز نہیں بن سکتے.
دیکھا فضیلت, نوجوان نسل کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے.
اتنی بار کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں مت پھلایا کرو, اسی طرح برتن ٹوٹتے ہیں اور نام ہمارا بدنام ہوتا ہے. نہ
یہ کیا وحشت ہے, کچھ معلوم تو ہو.
بابا مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے, میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر احمد کتنے بنکچول ہیں, مار ڈالیں گے مجھے.
بڑے افسوس کی بات ہے کہ موت کے فرشتے کو یوں اسپتال میں چھوڑ دیا ہے, وہ بھی بچوں کے وارڈ میں.
اچھا تو حسینہ ابا, آپ کی ایک بہت مزیدار تصویر میں نے ڈالی ہے اپنے فیس بک پر باقی سب چیزوں کے ساتھ, جس میں آپ انارکلی بنی ہوئی ہیں.
وہ میرے کالج میں جب ہم بی ایڈ کر رہے تھے تو ہمارے پرنسپل صاحب بہت سخت تھے.
اچھا,
وہ میری اردو بہت اچھی تھی تو وہ مجھ سے پڑھوا رہے تھے, وہ پڑھواتے رہے, اور انہوں نے مجھے یہ امپریشن دیا کہ میں ریہرسل کرتی رہوں تو وہ لڑکی سیکھ لے گی جو کر رہی ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ آخری دنوں میں انہوں نے ایک دم یہ اعلان کر دیا کہ یہ رول حسینہ کرے گی. اور باپ میرے اوپر تو بم پڑ گیا, کیونکہ میری والدہ تو کبھی بھی نہیں اسے برداشت کرتی.
جی
ان کو بتایا تو وہ تو پریشان ہو گئی کہ نہیں. اچھا انہیں وہاں پر یہ سلسلہ تھا کہ اگر میں نہ کرتی تو میرے سارے جو مارکس تھے وہ کٹ جاتے اس کے.
اچھا, جو کچھ آپ نے محنت کی,
اس طرح کی دھمکی تھی ان کی. حالانکہ وہ ویسے تو میرے ساتھ بہت اچھے تھے, پرنسپل بختیاری صاحب نام تھا ان کا.
جی.
لیکن اس بار انہوں نے مجھے کس طرح سے گھیرا کہ میں نہیں سمجھ سکی.
جی.
اور اس کے بعد میں نے بہت, سب لوگوں نے پھر اما سے کہا کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن کا تو ہے, چلیے کرنے دیجئے, اب ہو گیا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ پورا سال بیکار جائے, اگر یہ بیٹھ جائے گی تو سال بیکار ہو جائے گا.
جی.
اور اتنا مشکل سال ہوتا ہے وہ, تو خیر وہ میں نے کیا اور اس پہ مجھے فرسٹ پرائز بھی ملا, شیلڈ ملی, اور شیلڈ مجھے ملی آغا ناصر صاحب کے ہاتھ.
اچھا, خود ایک لیجنڈ ہیں.
وہ جج کرنے آئے تھے, تین ججز تھے, تو ان لوگوں نے بیسٹ رول پہ مجھے دیا, سیکنڈ کسی اور کو دیا ہوگا مجھے یاد نہیں رہا, لیکن میں اتنی ہونک سی تھی, ڈری ہوئی कि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कर गई मैं।
अगर मैं आपकी प्रोफेसर होती ना, पता है मुझे क्या डर होता कि ये लड़की आखिर में दीवार में चुने जाने से इनकार कर देगी, तो दूर रखो। तो क्योंकि आपका मिजाज नहीं है कि आपको दीवार में चुन दिया जाए।
नहीं, बिल्कुल नहीं चुना जा सकता। लेकिन वो ड्रामा था और उस वक्त मुझे करना था, मैं हामी में भर चुकी थी जब, तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इतने सारे लोग थे देखने वाले, तो बस वो एक बड़ा अजीब तजुर्बा था मेरे लिए।
तो आपकी और भी
लोगों ने बहुत पूछा कि तुमने बाद में, तुम्हें ड्रामे का शौक नहीं है। मैंने कहा अगर होता भी थोड़ा बहुत मुझे 1% भी, तो उस ड्रामे के बाद से बिल्कुल खत्म हो जाना था।
जब मुझे जबरन ड्रामा कराया गया,
इतनी मुश्किल में मैंने वो ड्रामा किया था।
वैसे आगा नासिर साहब को ये नहीं पता था कि उस वक्त एक लेजेंड जो है एक दूसरी लेजेंड को अवार्ड दे रही है।
उस वक्त उनको नहीं पता था वाकई, लेकिन बाद में उन्होंने, जब मैं टीवी पे आई तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था, बहुत एनकरेज किया। उन्होंने बहुत सारे लोग हैं, असलम अजहर साहब हैं, उन्होंने बहुत एनकरेज किया, जमान अली खान साहब, इन लोगों ने, मोहसिन अली साहब, शिरीन, ये सब लोगों ने। असल में इंसान अपने आप तो पूरा नहीं बनता है, बहुत सारे लोग उसके आगे बढ़ाने में हाथ लगाते हैं।
बिल्कुल।
मेरे साथ मेरी लक ने शायद काम किया कि बहुत सारे लोग थे जो मुझे लाइक करके मुझे आगे बढ़ाना चाह रहे थे।
हसीना पर मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई, आपने किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब आप यानी लिख रही थी, उस जमाने में दो डायरेक्टर हुआ करते थे और उसमें एक आदमी जब रिकॉर्डिंग वगैरह में मसरूफ होता था तो दूसरा बैठ के राइटर के साथ और उनके साथ एक्टर के साथ डिस्कस करता था। तो एक टीम थी, एक टीम की तरह। लेकिन मौजूदा दौर में एक आदमी के क्रेडिट लेने का रिवाज हो गया और टीम वर्क खत्म हो गया।
तो कोई भी इस पे तैयार नहीं होगा कि अपना क्रेडिट किसी और को दे दे। हमारे जमाने के जो डायरेक्टर्स थे
जी,
शिरीन और मोहसिन अली थे, दोनों एक एपिसोड वो करते थे, एक वो करते थे। और आप लोगों को कभी भी उसमें कोई भी शायबा भी नहीं होगा कि कौन सा किसका किया हुआ है।
बिल्कुल,
वो इतनी मेंटल वेवलेंथ इतनी करीब थी हम तीनों के कि हम तीनों डिस्कस करके, एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है, दूसरा मेरे साथ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा है, मैंने वो लिख के घर से तैयार करके लाई, उसको दिया, तो दूसरे के साथ डिस्कस किया, क्योंकि उसमें हर हफ्ते चलता था।
बिल्कुल।
उसमें आपको गुंजाइश नहीं थी एक दिन के डिले की भी, तो आपको मुसलसल लिखना होता था दिन और रात।
और जब भी ऐसी
मेहनत भी शामिल होती है, शौक भी था।
सच्ची
बात यह है कि पैशन हो गया था मुझे कि अच्छा काम करना है,
तो उसमें
अच्छा काम शायद हो गया।
एक काम की खुशी भी थी ना, एक प्लेजर भी तो होता है ना कि जब आप काम ऐसा कर रहे हो।
ये खैर इसमें तो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। मसलन मैं आपको बताऊं, मेरा पहला प्ले जो चला था हैप्पी ईद मुबारक
जी,
वो एक तरह से अजीब प्ले था कि मेरे वालिद ने मुझे बहुत एनकरेज किया बचपन से, मैं बहुत लाडली रही हूँ। लेकिन वो प्ले जब चला है 1972 में, दिसंबर, मेरे वालिद की डेथ हुई है और उसके कोई 12 दिन बाद वो प्ले चला है। मैं लिख के पहले दे चुकी थी लेकिन मैंने देखा नहीं वो प्ले। जाहिर है वालिद की डेथ हमारे लिए बहुत बड़ा एक सानिया था, लेकिन जब अगले दिन से फोन आने लगे और उसके बाद एक उधम मच गया कि इतना अच्छा प्ले आया है, इतना अच्छा प्ले आया है, और उसके बाद फिर मुझे बुलवाया गया और उसके बाद उन्होंने बहुत समझाया, कमर आफ्ताब साहब ने भी और असलम अजहर साहब ने भी, कि जिंदगी में हाथ से आते रहते हैं और तुमने तो उनकी उनकी जहन के मुताबिक काम किया है, वो खुश होंगे, और इस तरह की बातें की। फिर उसके बाद बाकायदा एक छोटे से प्ले के लिए एक सेरेमनी हुई और उस सेरेमनी में हम सबको अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड्स क्या थे, लिफाफे में रखे हुए 200 रुपए, सबको 200 रुपए दिए गए थे इनाम।
अच्छा, उसमें 200 रुपए बड़ी चीज होते होंगे।
बात बड़े मजे की है
जी,
कि उस वक्त कितना एनकरेज इंसान होता है कि आपने एक ड्रामा लिखा, आपको पता भी नहीं कैसा हुआ था अच्छा, लेकिन उसकी इतनी तारीफ हो रही है और उसका इतना टीवी वाले इतना ख्याल कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो इंसान से एनकरेज होता है, आगे बढ़ता है,
इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हमारे बहुत से सुनने वालों ने सैकड़ों की तादाद में आपकी आपको खुशामदीद कहा है, और
मेरी तरफ से सबको बहुत प्यारा सलाम।
मैं उन सब की तरफ से आपको वालेकुम सलाम कहती हूँ और कुछ नाम पढ़ देती हूँ। मकसूद अहमद, सादिक सिद्दीक, नासिर लाशारी साहब, रजा, और इन सब ने आपकी आमद पे खुशी का इजहार किया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक तो अख्तर हुसैन और शाकिर सलीम साहब। तो जी अख्तर हुसैन साहब,
अख्तर हुसैन खुशाब से बात कर रहा हूँ।
जी
मैं सबसे पहले तो अपने आपा को खुशामदीद कहता हूँ कि इन्होंने जी हमारे लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हादसा है, पूरे मुल्क कौम का नाम रोशन किया है जी पूरी दुनिया में।
जी
तो मेरे इनसे सवाल ये है कि सारे मुल्क की 70% आबादी औरतों की जो है ना भारतों में रहती है
जी,
तो आप इनके ये को खसूसी तौर पर उनको ड्रामा तहरीर किया हो जिसने उनके साल की खासी की गई है, क्योंकि
जी जरूर
सवाल नहीं समझ में।
इन्होंने कहा कि हमारी ज्यादातर आबादी जो है देहातों में है, तो आपने कोई ऐसा प्ले भी लिखा जो देहात की औरत के बारे में हो?
जी 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 बिल्कुल, मैंने रेडियो के लिए गांव की औरतों के लिए 26 एपिसोड्स की एक सीरियल लिखी थी जो कि गांव के ऊपर थी, बिल्कुल काश्तकारी के ऊपर थी, जिसमें गाय भैंस और फसल बोना, मतलब एक तरह से सिखाना भी था
जी।
वो मैटर मुझे मिला था कि इस तरह से बताइएगा, लेकिन वो सारा कॉमेडी में था इसलिए वो इतना पॉपुलर हुआ था, और ये पंजाब के गांव में हुआ था।
अच्छा, तो ये तो जबरदस्त काम है आपका।
एक सीरियल ये लिखी थी, एक दूसरी उसके बाद हेल्थ के ऊपर, गाँव की औरतों की हेल्थ का क्या ख्याल रखना चाहिए, वो भी कॉमेडी थी।
अच्छा,
तो वो भी 26 एपिसोड्स थे।
अल्लाह देता साहब है बिहारी से। जी अल्लाह देता साहब।
हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम, पिपली अड्डा बिहारी से कर रहा हूँ।
जी वालेकुम सलाम। जी
जी, अभी ये पड़ी हम आपकी बात से सुन रहे थे, तो जो उन्होंने देहात की औरतों पे अपना वो लिखा था
जी,
तो उसका नाम क्या था? आजकल तो वो ऐसे नहीं मिल रहे।
अल्लाह देता साहब, मैं आपने जो बात लिखी कही है ना, यही बात मैं पूछना चाह रही थी हसीना आपा से। हसीना आपा, ये बड़ी पते की इन्होंने बात कही, क्योंकि मैं आज जैसे कि बहुत ढूंढना चाह रही थी कि आपका जो कराची के हालात पे ड्रामा था चुप दरिया जी, कि उसका मुझे कोई क्लिप मिल जाए, क्योंकि मैं उन चीजों को लेना चाह रही थी जो
हेडक्वार्टर में मिलता, तो नहीं यहाँ कराची से नहीं मिलता।
जी हाँ, और उस पे फेसबुक उस पे भी नहीं था, यूट्यूब पे भी नहीं था। तो आप अगर एक काम, आपकी मुझे फेसबुक बहुत पसंद आई, उसमें जैसे बहुत ज्यादा शेरों का कलेक्शन है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो आपका फेसबुक पेज है उस पे शायद आपकी इस चीजों के ऑडियो और वीडियो अगर होना, तो कोई भी शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी चीजों को सुनना चाहता है, उसको एक खजाना मिल सकता है वहां से। तो इस पे कुछ काम
मैं जरूर कहूंगी कि ये करवा दें।
हाँ। बिल्कुल,
क्योंकि चुप दरिया से मैं भी चाह रही थी कि कराची में जो फसादात हुए थे उसके ऊपर बड़े दिल से लिखा था मैंने, और बहुत मशहूर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा चलाया ही नहीं इन लोगों ने।
और मैंने भी इतने कमेंट्स उस पे सुने और अच्छे सुने, और मैं तड़पती रह गई, यानी सचमुच कि मैं उस ड्रामे को सुनूं कि आपने क्या लिखा, लेकिन वो मैं नहीं सुन सकी। तो आप वो प्लीज जरूर फेसबुक पर डालिएगा, फिर मैं उसको अपने पेज पे डालूंगी।
क्योंकि उसमें सानिया सईद ने काम किया था, आसिफ रजा मीर ने काम किया था, और एक बच्ची छोटी सी, तीन लोग थे टोटल, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा गया था
जी। वो नाम ही उसका इतना अच्छा सा। अच्छा, ये मैं नाम की पूछूंगी तो जी आपसे क्यों नाम रखा, लेकिन शाकिर सलीम को ले लूं, वापस आए। जी शाकिर सलीम साहब, शाकिर सलीम।
जी शाकिर साहब,
शाकिर सलीम बात करो इस्लामाबाद से।
जी अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह, ये तो एक बहुत बड़ा इदारा है, इनका बहुत बड़ा नाम है,
कोई शक नहीं इसमें।
हमारे जहनों पे नक्श है कबाचा का जो किरदार है। पिछले दिनों मेरी असर नदीम सैयद साहब से मुलाकात हुई थी, तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया, ये ड्रामे का जो इन्हेताब है ये किसकी क्या वजह है?
जी
उन्होंने बड़े अच्छे ड्रामे लिखे, चांद किरण वगैरह।
जी
तो फिर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये जो ड्रामे का इन्हेताब है, ये सवाल है, इसकी क्या असबाब है और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?
जी जी, आप
देखिए, असबाब तो मैं आपको बड़ो सीधे सादे लफ्जों में बता देती हूँ कि हमारे यहाँ जब टीवी शुरू हुआ था तो जो टैलेंट लिए गए थे वो उन लोगों को बाकायदा इंटरव्यू करके लिया गया था जो कि पढ़े लिखे भी थे और जिनमें एस्थेटिक सेंस भी था, या जो ड्रामा या शायरी या म्यूजिक जो भी उनका फील्ड थी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जब पता नहीं किस सन में जब ये नेशनलाइज होने लगा टीवी, सारी चीजें नेशनलाइज होने लगी, तो टीवी पे ये बाकायदा लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया कि सिर्फ टीवी पे लोग जो चल रहे हैं वो एक खास ग्रुप के लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग के होते हैं या अदीब होते हैं या शायर होते हैं या मौसीकार होते हैं, तो सबको मौका देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये एक कानून बना दिया कि कोटा सिस्टम होगा, हर इलाके से हर सूबे से आदमी लिए जाएंगे, दो दो आदमी। अब आप ये बताइए कि अदब में, आर्ट में, शायरी में हर इंसान तो नहीं आ सकता। अब उसका नतीजा हुआ कि ये एक तरह का ऑफिस बन गया, लोग आते गए, उनको जाहिर है लेना पड़ा। अच्छा, उस जमाने में एकेडमी भी थी टीवी की, हम लोग लेक्चर देने जाते थे, तो आप यकीन करें जब हम लेक्चर दे के टेस्ट लेते थे तो वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो आजकल भी काम कर रहे हैं और पहले भी करते रहे थे।
मेरा ख्याल है उनका फोन कट गया, गुलरुख मिला रही। गुलरुख, इस दौरान हम उनका एक झलक सुनवा देते हैं उनके ड्रामे की, अनकही गालबन वो है जी, सुनते हैं।
क्योंकि समय बाद वक्त होता है, कुछ लोग समंदर के किनारे रेत पर कहानियां लिखते हैं और उनको बगैर मिटाए हुए वापस लौट जाते हैं इस ख्याल से कि लहरें उन्हें मिटा देंगी, वो अच्छा नहीं करते। क्योंकि समय बाद वक्त होता है कि लहरों पर जोर टूट जाता है या कुछ अल्फाज बगैर मिटे रह जाते हैं जमीन और आसमान के दरमियान शर्मिंदा।
आप किन लफ्जों की बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसी कोई कहानी याद नहीं जो मेरे लिए रेत पे लिखी गई हो। मैं तो बारहा साहिलों पर गई उन लफ्जों की तलाश में, मगर मुझे सिवाय खाली सीपियों और रंगीन पत्थरों के कुछ नहीं मिला।
कुछ समंदर दिलों में भी होते हैं जिन पर कहानियां लिखी हुई होती हैं।
आप कहते हैं कि आप लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर मेरा ख्याल है कि आप लफ्जों को अपनी ढाल बनाकर बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मगर आपको अपने बचाव की जरूरत क्यों है, खौफ क्यों है? आप तो अपने किले में बहुत महफूज हैं तैमूर साहब। आपके किले के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि इन्हें ना तो कोई खोल सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तोड़ना चाहेगा।
हसीना अबा, आपने बहुत से ना सिर्फ ये के किरदार बल्कि ये कि बहुत से एक्टर जो थे उनको भी मुतारिफ कराया, शहनाज शेख भी उनमें से एक हैं। तो ये बहुत से लोग जो आपके हवाले से आए शो इसमें शोबिज में और फिर बहुत आगे गए, उनमें आपका सबसे पसंदीदा कौन है?
देखिए, शहनाज तो बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छी
जी।
मतलब ये कॉमेडी करना आसान नहीं होता है क्योंकि आमतौर पर कॉमेडी में लोग ओवर एक्ट कर जाते हैं, लेकिन शहनाज ने कभी ओवर एक्टिंग नहीं की, अंदर रह के काम करती थी और इतनी मासूमियत से एक्टिंग करती थी और इतनी मासूमियत से कॉमेडी करती थी कि वो वाकई कॉमेडी बन जाती।
हाँ, बहुत प्यारी
शहनाज को बहुत मुझे पसंद भी है और बहुत अच्छी वो है अदाकारा।
उठने की कोशिश करो, कम ऑन, ट्राई इट। सारा आनी, मैं उठ नहीं सकती, मेरा दिल करता है कि मैं इसी तरह आगे बंद किए लेटी रहूं। बेवकूफी की बातें मत करो, डर किस बात का है, उठो, कोशिश करो। आपने ठीक कहा था आनी, मकान पत्थर के होते हैं, सिर्फ लोग अहम होते हैं। नहीं, मैंने गलत कहा था, कभी कभी कोई जगह चाहे पत्थर की हो चाहे रेत की बहुत अहम होती है, इसलिए कि वो हमारी यादों की गवाह होती है। तुमने गलत नहीं सोचा था। इन सारे बरसों में मैंने जुनून की हद तक इस घर को हासिल करने की कोशिश की थी, और जब ये मुझे मिला तो वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ यादें थी, साये थे, खौफ था, और वो ख्वाब, और मुझे वहां जगाने वाला भी कोई नहीं था।
उसके बाद मरीना बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमें मिली और इसको इन लोगों को हम ही लोग घेर घेर के लाते थे। ये भी मैं आपको बता दूं
जी,
शहनाज के घर मुझे जाना पड़ा था और उससे रिक्वेस्ट करना पड़ी थी और चूंकि वो मेरी कहती थी कि मैं आपकी फैन हूँ इसलिए मैं मान रही हूँ वरना मैं कभी नहीं आती। इसी तरह से शैला अंकल उर्फी में वो शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, वो भी मेरी बड़ी अच्छी सीरियल थी लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में है इसलिए बहुत कम लोगों ने देखी।
नहीं, मैंने अंकल उर्फी देखी है, शकील उसमें है और मुझे बहुत पसंद है वो भी।
शकील है और दीना जो थी
जी,
दीना
बड़ी ग्रेसफुल है वो,
जबरदस्त थी और याददाश्त भी इतनी अच्छी थी कि आखिरी सीन में, आखिरी एपिसोड के लास्ट सीन में 9 मिनट का सीन था
जी।
और 9 मिनट वो लड़की अकेली बोली थी और विदाउट एनी इंटरप्शन एक शॉट में पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ था।
बड़ी बात है,
बहुत काबिल तारीफ है।
बिल्कुल,
और रूही बानो का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, हमारे मुल्क की इतनी बड़ी अदाकारा, बदकिस्मती से उसके साथ हालात कुछ ऐसे हुए तो वो उस तरह नहीं रह सकी जैसे थी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि वो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अदाकारा,
बहुत प्यारी भी और फिर कमाल की जैसे फील करके बोलती थी हर चीज़।
उसका जवाब
जी,
आशी बेटे आपको क्या चाहिए? सफिया हर बात को मसला ना बनाया करो।
अभी तो सिर्फ 2,000 रुपए से,
जरा पूछो तो क्या होगा इन 2,000 का?
किताब लिख रही हूँ।
अच्छा, किताब लिख रही हो तो फिर अस्पताल क्यों जाती हो?
अस्पताल के मौजू पे किताब लिख रही
है। अस्पताल पर किताब? मेरा मतलब है बेटे कुछ कहानी वहानी निकली होती।
कह जी, 1,000 रुपए का फायदा होगा।
फायदा होगा किताब से? गुड, देखा सफिया बेगम तुमने, हमारी बेटी इतनी सी उम्र में कितनी दूर अंदेश निकली।
ऐसी औंधी बातों पे तुम ही यकीन किया करो, और मैं तो 100 बातों की एक बात जानती हूँ कि जवान जहान लड़कियों को भला किताबें लिखने की जरूरत ही क्या।
अच्छा अच्छा,
खैर आप लोग नहीं चाहते तो।
रात के आर्टिस्ट घबराते थे कि रूही जब रिहर्सल करती हैं तो दूसरी तरह होता है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है रूही बिल्कुल बदल जाती है, बहुत बेहतर करने लगती है।
वो कैरेक्टर में आ जाती होंगी ना उस वक्त, उस कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती
हैं। खानदार रियासत थी हमारी
जी,
वो बहुत प्यारी लड़की थी, मतलब इन लोगों से हमारी दोस्तियां भी थी और फिर मुझे लकीली जो बेस्ट हो सकते थे डायरेक्टर वो मिले, जैसे मोहसिन अली साहब, शीरीन खान, फिर शहजाद खलील साहब, शुएब मंसूर और साहरा काजमी, जहीर खान, ये लोग कई हमारे दोस्त भी थे और डायरेक्टर भी थे। तो इसमें बड़ा फायदा होता है कि आपस में एक दूसरे को इंसान समझा भी देता है और इसमें लतीफे भी बहुत होते हैं, इसमें इतने लतीफे होते हैं कि अगर मैं लिखने बैठूं तो पूरी किताब बन जाए। और अक्सर लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि आप किताब क्यों नहीं लिखती, वो बस मूड नहीं बनता।
वैसे आपको लिखना चाहिए, आपको तो एक मेमोयर अपने लिखने चाहिए, बल्कि आप लिखिए नहीं, आप बोलती जाइए और कोई लिख ले, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, कोई ना कोई तैयार हो जाए।
उसने कहा था कि आप तो हमारे यहाँ की एक बड़ी पब्लिशर है हूरी, उसने कहा था आप बोलती जाइए और रिकॉर्ड कर दीजिए और मैं करवा दूंगी उसे।
बिल्कुल,
अच्छा मैं सब कोशिश करूंगी।
वैसे कहना तो
हमारे हीरो रहे इतने जमाने, तलत हुसैन ने काम, मतलब जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सब ने मेरे साथ काम किया, और सलीम नासिर को तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, इतना प्यारा इंसान था
बहुत, और आर्टिस्ट भी बहुत
अच्छे।
जी हाँ जी हाँ, और बहुत स्वीट, हालांकि वो सीरियस रोल करते थे मगर ये जरा लाइट,
हालांकि वो उससे पहले बिल्कुल सीरियस करते थे मगर वो चूंकि हम लोगों के पास बैठ के मस्करापन किया करते थे इसलिए हमने सोचा कि इनको भी जरा लगाएं देखें।
बिल्कुल,
बहुत कमाल की।
ये होता है जब एक जाती रिश्ता होता है ना एक टीम में, मतलब एक दूसरे को वो ऐसे नहीं समझते कि कोई ये फला और फला, बल्कि
घरेलू माहौल,
घरेलू माहौल,
इतना प्यारा इंसान चला गया, बेरोज इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, और बेचारा बेरोज तो कबाचा में ऐसा फंसा कि अब तक निकल ही नहीं पा रहा है।
अभी भी किसी ने कबाचा का जिक्र किया, बहुत ही महबूब किरदार है।
जाता है बस कबाचे ही की आवाज सुनाई देती, कहता है आपने तो मुझे कबाचा ही बना दिया।
ये अजब कयामतें हैं तेरी रह गुजर में गुजरा, ना हुआ के मर मिटे हम, ना हुआ हुआ के जी उठे।
कबाचा,
अस्सलामु अलैकुम।
क्या कह रहे थे तुम बोलो।
वो ये कुछ शेर कहे थे मैंने, वो जंगल वाला शेर नहीं। हम
किसको कह रहे थे, किसको सुना रहे थे?
असल में मिसनिया ये एक शायर के दिल की आवाज है, और ये जो अशार थे ये मेरे दिल से उमंड उमंड के उठ रहे हैं और मेरे होंठों से बरसात की तरह बरस रहे हैं।
कबाचा तुम शायर हो?
अब बन गया हूँ मिसनिया। और एक गजल अर्ज है। भूल करो अहदे वफा।
बस 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 वाचो।
देखिए प्लीज मिसनिया, कम से कम आप तो मुझे इस नाम से ना पुकारा करें, मेरी शायरी मजरूह हो जाएगी। और वैसे भी मैंने अपना तखल्लुस नामुराद रख लिया है।
बात सुनो कबाचा नामुराद, आइंदा एक शेर भी सुनाए तो तुम्हारा नाम कबाचा नामुराद मरहूम हो जाएगा।
वो आए थे हमारे प्रोग्राम में, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा हसीना अब ये बताइए मुझे कि मैं असल में रूही बानो के बारे में पूछना चाह रही थी कि रूही बानो जो है उनका बड़ा ट्रेजिक सा रहा, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, तो कुछ उनके बारे में है पता आपको?
मुझे बहुत पता है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी
जी।
मैं जब शुरू में वो बीमार पड़ी है तो मैं उसके घर भी गई थी। असल में उसका एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था।
अच्छा।
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अदाकार बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, आम लोगों में उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए, वो जरा डिफरेंट होते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन वो लड़की जो थी वो बहुत सेंसिटिव थी, फिर उसका घराना जो था वो इनसेंसिटिव था, मोस्ट इनसेंसिटिव पीपल
जी।
उन लोगों ने रूही के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो रूही उनकी वजह से, वो पढ़ी लिखी लड़की, साइकोलॉजी में उसने किया हुआ था और शुरू में वो बहुत अच्छी तरह रही, लेकिन बाद में उसकी वालदा ने और उसकी बहनों ने बहुत पाबंदियां लगाई, कभी कुछ कहा कभी कुछ, तो रफ्ता रफ्ता वो धीरे, फिर शादी उसने एक की, वो बदनसीबी से वो आदमी ने उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे साहब थे लेकिन उन्होंने भी आखिर में अपनी पहली बीवी की वजह से उसे छोड़ा
जी।
तो ये जो हादसे होते हैं जिंदगी में ये आम आदमी तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन ऐसे खास लोग जो कि इतने हिसास होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो रूही भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी जहनी तवाजुन जो था वो थोड़ा सा खराब हो गया
जी।
फिर उसका बेटा मारा गया।
अच्छा।
ये स्नाइपिंग फायरिंग में जो होते हैं उसमें मारा गया, तो उसके बाद से तो वो बिल्कुल ही अब, और इतना दुख है मुझे उसका, मेरे एक सरमाया जैसे आपके हाथ से निकल गया, और उस वक्त चाहते तो शायद लोग रोक सकते थे जो अथॉरिटीज में थे
जी।
उसको कुछ तवज्जो दे के उसको उसकी मदद करके उसको निकाल सकते थे इस ट्रॉमा से, मगर नहीं निकाला।
आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा?
किरण मैं न झूठे रिश्तों का कायल हूं और न जबरदस्ती की मोहब्बत का, मुझे कम से कम इतना तो एतमाद हो कि मैं जिस रास्ते पर कदम उठा रहा हूं वही मेरा रास्ता है, और इस बात का सिर्फ आप यकीन दिला सकती हैं।
मैं यकीन दिलाऊ? मैं जो रिश्तों और मोहब्बत का एतबार खो बैठी है।
आपको मुझ पर भी एतमाद नहीं? आप एक बार ईमानदारी से अपने आप से पूछ तो नहीं कि आप क्या चाहती हैं?
आप यही सवाल अपने आप से नहीं कर सकते? मैं तो एक बिगड़ी हुई तस्वीर हूं जिसके रंग बिखर चुके हैं। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, किरण या आशी।
नामों में क्या रखा है, और फिर मोहब्बत का तो कोई नाम नहीं होता।
मोहब्बत इतनी पायदार भी नहीं होती।
अगर मोहब्बत इतनी पायदार ना होती तो आप इतनी उलझी हुई भी ना होती।
सलमान साहब, मुमकिन है मैं वो साबित ना हो सकूं जो आपकी नजर में हो।
आपने अपने गिर्द एक खोल चढ़ा रखा है और हकायक का सामना करते हुए डरती हैं।
क्योंकि मैंने रिश्तों को टूटते और मोहब्बत का एतबार उठते देखा है। आपको आपको वाकई अपने फैसले पर इतना यकीन है?
जी हाँ बिल्कुल।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ, गलत हूँ।
जरूरी नहीं कि जो लोग मुख्तलिफ हैं वो गलत भी हो।
वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी, मतलब मैं तो उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानती, इत्तेफाक से मैंने उनका इंटरव्यू भी नहीं किया, लेकिन होता है ना एक पैकेज जिस पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, रूही उस तरह की थी और उनको उतना ही जैसे आपने कहा कि बहुत ही इनसेंसिटिव पूरा उनके जो चारों तरफ लोग थे, बहुत बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर।
बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी, जो सभी रोल उसके पास। अब उसने किरण कहानी में दो तरह के रोल किए,
जी
प्योर कॉमेडी थी और एक बहुत दुखी लड़की का रोल था। इसने अच्छी तरह निभाया, उसने
दोनों ही अच्छी तरह निभाया उन्होंने बहुत।
हाँ।
अच्छा तो आप, मैं हसीना भाई कुछ कॉलर्स ले लूँ। शमीम मलिक हैं बलूचिस्तान से। शमीम मलिक साहब
जी, ज़ेबा बख्तियार के हेना वाली हसीना में
जी।
जी ज़ेबा बख्तियार ने मेरे साथ तानसेन में काम किया था, फिर मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था अपनी फिल्म हिना के लिए इंडिया में।
जी हिना के डायलॉग आपने लिखे हैं,
हिना बनाई आप लोग जी।
अच्छा ये
टीवी पर जो हमारे इलाकों में टीवी जो होते थे पीटीवी प्रोग्रामिंग चलते थे सुनिए तो इसलिए लोग नहीं जानते हमारे, लेकिन मैंने अखबार अखबार जहां में बतौर का कन्हैया शहनाज से कबाचा ये मैडम ये सब चीजें मैं पढ़ता था, सिर्फ मैंने देखा कुछ नहीं उनका।
जाहिर है तो काफी पहले की बात है,
कितने अफसोस की बात है। देखिए अभी आप शमीम की बात से समझ सकती हैं, एक बहुत ही सेंसिबल नौजवान, और ऐसे बहुत से लोग फोन करते हैं, मुझे हसीना पर समझ नहीं आता, हम तरक्की की बात करते हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, दूर दराज इलाकों में केबल नहीं, बस देखिए मतलब ये कितने जुल्म की बात है कि अगर एक अर्बन एरियाज में सब कुछ हो और जो लोग रिमोट एरियाज में उनके पास कुछ भी ना हो, मतलब वो सिर्फ पढ़ के जाने के हसीना मुइन कौन है और कबाचा कौन है, तो बड़ा मुझे
नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अब
जी
से कोई 30-35 साल पहले जब मैं सवाद गई थी, सवाद के रिमोट एरियाज में, वहां भी लोगों को मेरा पता था। और बल्कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि एक जगह हम लोग कैमरा ले जाना भूल गए थे।
अच्छा।
तो हमने जाके दुकान वाले से कहा कि हमें किराए पे दे दें, और तो उसने कहा इस तरह तो हम नहीं देंगे, हमें आप वो रखवाइए कुछ रकम। तुमने कहा वो आप लिख लीजिए, हमने रकम लिखवा दी। उसके बाद उसने नाम पूछा, मैंने नाम लिखवाया, जैसे उसने मेरा नाम पढ़ा तो उसने कहा आप वो तो नहीं है जो ड्रामा लिखती है? जी मैं वही हूँ। उसने वो फाड़ दिया कागज, उसने कहा आप कैमरा ले जाइए, जितने दिन के आए रखिए, फिर आप भिजवा दीजिएगा। मतलब इतना प्यार उस जमाने में भी था, लेकिन बाद में जो हमारे हालात तालिबान और इन सब चीजों की वजह से बिगड़े हैं, तो फिर ये सब लोग जो है ये कट ऑफ होते चले गए, अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज जो है वो कट ऑफ,
लकीर खींच गए उनके बीच में। अच्छा और देखिए ये जो सवाल है, मैं पढ़ रही थी किसी हिस्टोरियन का, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वालिये सवाद थे उन्होंने उसको एक ऐसी जी 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 एक ऐसी स्टेट बनाया था जो कि एक मिसाली स्टेट थी एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से।
बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बना हुआ है वो
जी।
तो वो अब कॉलेज पता नहीं कितना चल रहा है, लेकिन उनके महल को उन्होंने अब होटल बना दिया है।
जी हाँ, लेकिन
महल जो उनका था वो होटल बन गया है। लेकिन वालिये सवाद की जो बेटी थी नसीम औरंगजेब का नाम आपने,
सदर अयूब खान की बेटी थी ना वो, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनका तो इंतकाल हो चुका है। लेकिन मुझे बड़ी यानी खुशी होती है इस बात से कि हम आमतौर से समझते हैं एक वही जागीरदाराना तस्वुर के खिलाफ जो एक है, लेकिन आप देखिए उन्होंने वाली थे उसके, और उन्होंने वाकई जैसे प्यार से अपनी स्टेट को किस दर्जे पे पहुंचाया। तो
वाली थे और लोग उनके ऊपर जान देते स्टेट ने उन्हें ले लिया, स्टेट ले ली तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ये बात।
बिल्कुल।
और उसके बाद से सवाल जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा, उतना महफूज भी नहीं रहा, और ये सब कुछ बढ़ता गया
जी। लेकिन आप देखिए वहीं की एक लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई कहाँ पहुँची, वो बच्ची निकल के पाकिस्तान का कितना उसने नाम रोशन किया,
एक लड़की क्या दो तीन लड़कियां जिन्होंने
बिल्कुल
इतना बड़ा काम कर गई है माशाल्लाह मलाइला ने, तो इज्जत रख ली हमारे मुल्क
की, बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा फरमानुल्ला है बाजवड़ एजेंसी से, जी फरमानुल्ला। अच्छा इनकी कॉल कट गई है, बिलाल की कॉल भी थी लेकिन वो कुछ और मौजू पे थी। सनाउल्ला है कोहलू बलूचिस्तान से, सनाउल्ला।
वालेकुम मैडम।
जी वालेकुम सलाम
मैडम, आज आपको मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए हसीन आपा से।
ठीक है। अच्छा मैं जो आप शुरू से जो है ना बात कर रही थी कि लड़कियां जो है ना महफूज नहीं है यूनिवर्सिटी में, माशरे में, मतलब बहुत सा मतलब बहुत से मसाइल हैं, तो मैडम को मैं एक बात बता दूं कि वो उलमा के साथ साथ जो ना वो मैं उस पर तो लंबी बहस होगी, ये मोबाइल का भी बड़ा उसमें अहम किरदार है हमारे माशरे में, जो
मोबाइल तो एक आफत हो गया है
वो, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक। जी हसीना पर कैसे जी उनकी बात है,
तो मोबाइल इतना बुरा लगता है, एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरे ये कि अगर आप काम के लिए उसे यूज करें, मतलब वो तो हर चीज के लिए है कि अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत है, तो हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है
बिल्कुल।
हर लड़का हर लड़की अपने को हीरो हीरोइन समझते हैं और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, चुपके चुपके बातें करती रहती
है,
अब आप इसको क्या कहेंगे? गलती हुआ ना।
फिर वही दवा,
फिर वही जिद।
जाने बाबा क्या होगा इस दवा से, तुम जिंदगी की बर्फ रफ्तार गाड़ी को रोक लो, वापस ले आओगे,
हो सकता है ये भी कर डालो, कौन जाने।
तुम डॉक्टर हो या मसीहा?
हर डॉक्टर के अंदर एक ना एक मसीहा होता है, सो मेरे अंदर भी है।
बहुत जी लिया मेरी जान, अब तो धूप भी जर्द पड़ गई, रोशनी भी मध्यम हो गई
है। कहां किधर? अरे बाहर निकल के देखिए, धूप में गर्मी भी बहुत है और रोशनी भी बहुत है हमारे अतराफ।
या खौफ से दर गुजरे या जहां से गुजर जाए, मरना है कि जीना है, एक बात ठहर जाए।
बातें खत्म, मुंह खोलें आप जल्दी से चलें। ये
तो हसीना भाई, ये धूप किनारे से था एक
जिस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
अच्छा
ये म्यूजिक जो है ना,
हाँ,
इतनी खूबसूरत म्यूजिक है इसकी, अरशद महमूद ने बनाई थी,
बहुत वो टैलेंटेड म्यूजिशियन है,
जाहिर है जुमले तो लेकर ये तो एक राइटर की बड़ी अच्छी वो होती है पहचान की, अगर उसका जुमला बोला जाए और फौरन पहचान लिया जाए की किसका था।
बिल्कुल बिल्कुल,
अब ये कुछ खुशकिस्मती है मेरी और मुझे जो लोग मिले वो भी बहुत अच्छे, और राहत ने कितना अच्छा रोल अदा किया है इसने,
और अभी सारा ग्रुप जो है ये सिखा रहा है ना, कराची में ही है शायद ये सारे लोग, अब किसी इंस्टीट्यूट में
कराची मिलते हैं
जी, अरशद महमूद भी,
बल्कि राहत और शायरा पहले तो इस्लामाबाद में रहते थे
जी,
लेकिन परछाइयां में वो आपने ना देखा होगा शायद मेरा प्ले, वो जरूर देखिएगा अगर आपको मिल जाए, क्योंकि वो फ्री एडेप्टेशन है हेनरी जेम्स की नॉवेल का, माइसे का नाम था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ
पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का ट्रांसलेशन तो नहीं कहूंगी मैं, एडेप्टेशन कहूंगी,
हेनरी जेम्स की है ना गालबन वो,
इसके लिए मैंने तायरा और राहत को खासतौर से इस्लामाबाद से बुलवाया था।
अच्छा,
और टीवी के लोगों ने बाकायदा उनको भिजवाया था इसके लिए, क्योंकि मैंने कहा था मैं नहीं लिखूंगी अगर वो लोग नहीं आएंगे तो।
अच्छा,
तो इस तरह से इंसान काम की सहूलत हो तो काम अच्छा बनता है।
मैं ये समझती हूँ सिर्फ काम की सहूलत के अलावा, देखिए एक इसमें एक इज्जत का पहलू भी है, इसमें ये भी है कि कितनी
तो बहुत,
और ये
इतनी इज्जत मुझे यहाँ मिली है
बिल्कुल,
मैं तो शुक्र कितना भी अदा करूँ कम है।
میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے, لوگ ہوتے ہیں نا, لوگ ایسے رواداری میں بھی ذکر کرتے ہیں رائٹرز کا یا ایکٹرز, آپ کے لیے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں کوئی بھی بات کرتا ہے, آپ تو جگت ایک تو ہیں حسینہ آپا, وہ یہی کہتے ہیں آپ کو, اور یہ بہت محبت کی بات ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات جب وہ کہتے ہیں اس طرح, تو بڑے پیار سے وہ آپ کا نام لیتے ہیں. کئی تو آپ کے آپا کہنے والے شاید آپ سے بڑے بھی ہوں گے جب سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آپا,
جو بھی ہے وہ اب تو یہی کہنے لگے.
ہاں نہیں, مگر اس میں بڑا پیار ہے اس بات میں,
نہیں کہتے تھے لیکن اب ظاہر ہے میری عمر اتنی ہو گئی تو.
نہیں جب آپ چھوٹی نہیں تب بھی آپ کا ذکر
آپا کہنا شروع کیا تو سب نے وہی شروع کر دیا.
بالکل آپا سے زیادہ پیارا مجھے بھی, میں کہہ رہا ہوں بہت پیارا لفظ ہے یہ. اچھا اب آپ کی تصویریں مزید جو ڈلی اس میں, کہیں آپ دلیپ کمار صاحب کے ساتھ ہیں, کہیں لتا منگیشکر کے ساتھ بیٹھی ہیں, آپ نے انڈیا میں کہانیاں لکھی دور درشن کے لیے لکھی.
یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ راج کپور صاحب نے مجھے فون کیا تھا
جی ہاں
ٹی وی پہ
جی,
اور جب میں دھوپ کنارے کر رہی تھی تبھی اسی زمانے کی بات ہے یہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ حسینہ جی مجھے, میں نے خواب ہے میرا 7 سال کا حنا, اور خواجہ احمد عباس کی کہانی ہے لیکن ڈائیلاگس میں آپ سے لکھواؤں گا, اگر آپ نے نہیں لکھے تو میں نہیں کروں گا
جی.
اچھا یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا, کیونکہ میں نے کہا بھائی ہمیں تو اجازت نہیں ملے گی یہاں سے وہاں جا کے کام کرنے کی, ہمارے تو پڑوسیوں سے تعلقات اکثر اور بیشتر خراب رہتے ہیں
جی.
تو انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے آپ مجھ سے ملیے آ کے, چلیے ویسے ہی مل لیجیے
جی.
پھر مجھے انہوں نے ویزا بھجوایا, پھر میں اور میری بہن گئے, تو اس کے بعد ہم نے حنا کے ڈائلگ لکھنے کی حامی بھری, کیونکہ وہ رونے لگے تھے میرے سامنے. اب آپ امیجن کریں اتنا بڑا ڈائریکٹر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے رونے لگے کہ اگر آپ نے یہ نہیں لکھا تو میرا خواب پورا نہیں ہوگا. تو میں تو ویسے ہی جذباتی آدمی ہوں, میں میرے بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا نہیں راج صاحب میں ضرور کروں گی, میں جاتے ہی اجازت لوں گی اور کر دوں گی. تو خیر میں نے اجازت بھی لے لی, وہ تو خیر زندہ نہیں رہ سکے یہ میری بدقسمتی ہے, لیکن ان کے بیٹے رنبیر نے اس وقت میں نے زیبا کو انٹروڈیوس کرایا تھا, کیونکہ زیبا ہمارے ساتھ یہاں کام کر رہی تھی تانسین میں.
اچھا
اس طرح سے یہ ہوا تھا انڈیا میں جانے کا. تو دلیپ کمار صاحب تو بہت میرے انتہی کے زمانے سے میرے فین ہیں, انہوں نے مجھے ایک جملہ لکھ کے بھیجا تھا کہ حسینہ جی میں نے انتہی ایک رات میں بغیر پلک جھپکائے دیکھا ہے. میں تھوڑی سا مبالغہ ہوگا لیکن
نہیں, میں نہیں سمجھتی دلیپ صاحب نے اگر لکھا ہے نا سچ لکھا ہوگا, اور ان کے منہ سے یہ سننا اس سے بڑی کیا آنر ہو سکتی ہے اگر دلیپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو. تو
بہت سویٹ آدمی ہے, پھر پاکستان آئے بھی تھے, یہاں بھی ملے تھے, پھر میں انڈیا گئی تھی تب بھی ملے تھے.
اچھا
تو بہت اچھے انسان تھے.
حسینہ بھائی میں پھر آپ سے, آپ کی جو فیس بک کی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی, مگر میں یہ کہوں گی مجھے بہت پسند آیا انہوں نے جو بہت سارے اشعار اور چیزیں ڈالی ہیں, مگر جیسے کہ آپ کی یہ تحریر ہے دلیپ صاحب کی, اس کی ایک کاپی اگر ہو نا, اس کی فوٹو کاپی ڈال دیں.
میں ضرور ان کو دوں گی, کیونکہ میں خود اپنے آپ سے کتنی کہتی ہوں
جی,
وہ کبھی کبھی مجھ سے مشورہ لے لیتی ہے کہ یہ اشعار چھاپ دوں, یا اگر اس میں کوئی ویسے اشعار چھاپے جو مجھے پسند نہیں آئے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ کیوں ڈالے تھے تم نے.
ویسے انتخاب بہت اچھا ہے, مجھے ان کی زیادہ چیزیں
جی. کہ میرے تحریر کے کچھ حصے ڈال دیا کرو
وہ بھی, اور جیسے آپ کے آپ کو جو لوگوں نے آپ پہ دلیپ صاحب کے لکھی ہوئی چیز تو ایک تبرک ہے آپ کے لیے جو انہوں نے کہا, تو یہ سب ہے نا, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اچھا حسینہ آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟
کیا
آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے علاوہ؟
میرے آج ہی ہم بات کر رہے تھے, ہم 8 بہن بھائی تھے.
اچھا
جس میں سے ایک بہن کا پہلے انتقال ہو گیا کوئی 6-7 سال پہلے, اس کے بعد انفارچونیٹلی 2 سال پہلے میرے 2 بھائیوں کا 1 مہینے کے فرق سے انتقال ہوا. دس واز ہاربل,
کیونکہ
ہم لوگ آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں بھائی بہن
جی,
کہ ہمارے لیے برداشت کرنا بالکل ناممکن تھا. ایک بھائی میرا ہمارے ساتھ ہی ہماری جوائنٹ فیملی ہے
جی,
تو دونوں بھائی, دو بھائی, ایک میرے بھائی ڈاکٹر ہیں, دوسرا انجینئر تھا جس کا انتقال ہوا, اس کا یکایس 3 مہینے کے اندر, پہلے تو مرض ہی نہیں پتا چلا کیا ہے کیا ہے, کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس کو, اور جب مرض پتا چلا تو وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھا.
अच्छा,
तो वो खत्म हुआ और उससे 30 डेज के बाद अचानक इत्तला आई कि मेरा सबसे छोटा भाई जो कि हमारी फैमिली में जीनियस समझा जाता था और जिसे हमारे यहाँ डॉक्टर अताउर रहमान वगैरह आइंस्टाइन कहते थे यूनिवर्सिटी में
जी,
तो वो उसने हार्वर्ड से पढ़ा था और वहीं उसने जॉब की हुई थी, आईटी हेड था, उसका कार्डियक अरेस्ट में इंतकाल हुआ।
अरे,
तो अब हम 5 भाई बहन रहते हैं, एक भाई और 4 बहने।
अच्छा, तो
कुंभा हमारा बड़ा सुकड़ गया है, वालदैन पहले ही चले गए, वालिद का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का हुआ, फिर तीनों का हो गया, बस ऐसे ही होता है जिंदगी में।
पहले तो मैं
बहुत कमी हो गई,
बहुत। आपकी एक ड्रामा है मेरी बहन माया, तो उसकी एक झलक सुनते है ना, तो वो इसकी झलक सुन के फिर मैं डरते डरते एक सवाल आपसे पूछूंगी।
राजीव डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो गए, अब हम सब साथ घर जाएंगे। डैड, हम यहाँ से मरी नहीं जाएंगे, जब तक डॉक्टर आपको सफर की इजाजत ना दे दे आप हमारे साथ अपार्टमेंट में रहेंगे।
गुड आइडिया।
कैसे हैं शादी साहब?
ठीक हो?
कल हम हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज कर
दें। अच्छा,
चलो मैं राउंड पे हूँ।
ठीक है, थैंक यू।
शादी, बस मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, अब यहाँ से निकलो यार, कल तुम घर जाओ।
हसीना पर डरते डरते आप समझ ही गए होंगी क्या पूछूंगी। इतनी मकबूल राइटर, अनारकली के रोल से आगाज किया, इतनी जहीन, इतना अच्छी फैमिली, शादी का क्यों नहीं सोचा आपने? आप पे फिदा तो बहुत लोग होंगे, ये तो मैं यकीन से कहती हूँ।
बस वो एक बात तो मैं तुमको बताऊं, जो लोग कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से होता है
जी,
दूसरी बात ये कि जब इंसान काम कर रहा हो और काम की खुशी उसे महसूस हो रही हो, तो मेरे जैसा इंसान वन ट्रैक माइंड होता है,
सोचते ही
काम में लगी थी, उसके बाद मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, और जो आए वो मुझे अच्छे नहीं लगे, और जिनको शायद मैंने अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा लगा होगा, उन्होंने उनको मैंने लगी होंगी। जिंदगी में तो यही होता है।
नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि आप किसी
जो है ये किस्मत की होती है, इसमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश रही हूँ जिंदगी में।
ये तो खैर मुझे अंदाज है, आपकी तहरीरें इसका एक आईना है कि आपका एक बहुत आपकी जिंदगी और आपकी इतना बड़ा आपके गिर्द हुजूम रहता है, भांजे भतीजियों बहन भाइयों सबका।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो ये तो
अल्लाह ने अच्छे रखे इतने सारे भांजे भतीजे भतीजियां और सब मुझ पे सीधा।
बस ये हमें लगता है कि शायद किसी एक शख्स को आप बड़ा खुश नसीब बना सकती थी, लेकिन जरा वक्त लेती ना, सर उठाती अपनी तहरीरों से, तो
मौका देते ही हमारे प्रोड्यूसर राइटर
सारा कसूर शीरी पाशा वगैरह का है, जितना भी
जालिम थे। एक दफा मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कहा ड्रामा लिख के दिया शीरीन को संसार
जी,
शायद आपने ना देखा हो मगर वो ड्रामा जरूर देखना चाहिए।
अच्छा,
बहुत खूबसूरत ड्रामा था जिससे मुझे पहला अवार्ड टीवी का कंपटीशन का मिला था।
अच्छा,
तो मैं मरी के लिए गई थी और मरी में हम दोस्त थे, बहुत तफरी कर रहे थे। अच्छा, मरी में उस जमाने में रेस्ट हाउसेज में फोन भी नहीं होते थे।
हाँ।
तो एक दिन वो वेटर दौड़ा हुआ आया कि दीदी आपके लिए फोन आया है। मैंने कहा मेरे लिए? मैं तो बिल्कुल डर गई कि कैसे फोन आ गया, किसका आ गया। तो उसने जाके वो निकाल के दिखाया कि ये वो वहाँ पे जो सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है उनका, उसमें ठहरे हुए थे हम लोग। तो मैंने फोन पे बात की तो शीरीन थी हमारी डायरेक्टर, कहने लगी हसीना ये जो दो सीन लिखे हैं ना, अगर इसके बीच में एक कुशम सीन आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा शीरीन ड्रामे के वो जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो गई, अब क्या फायदा? नहीं नहीं, जरा तुम सोचो और लिखो। उसके बाद वो कहानी डिस्कस करने लगी, तो 15 मिनट गुजर गए तो बीच में आवाज आई टेलीफोन वाले की, बात सुनिए मैडम, पूरी कहानी मैंने सुन ली है। अब दूसरे लोग फोन के लिए लाइन बनाए खड़े हैं,
हाँ।
तो प्लीज और आप लोग मुख्तसर कर दें।
बहुत महसीना बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, इतने प्यार से सबसे बात करने का, और इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू रहेगी। सामीन इसके साथ ही इजाजत दीजिए। हसीना मोइन साहिबा हमारी मेहमान थी, गुलरुख हमारी प्रोड्यूसर थी, हमारी इंजीनियर थी निशवान कादी, शहनाज अजीज की जानिब से खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।